चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर् मृणमो सुधकेवलीभणितम्।
31 गाथा का पाठ पठ करके जो इंद्रिय जड़ता बोलो राड सहा बाधियम मुड़दियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जेडे छिदासाहु। कर इंद्रिज ज्ञाने स्वभावेरु अधिक जाने आत्मे को साधु जन भासे जितेंद्री उसे से। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है उसी जो निश्चय नय में स्थित साधु है वे वास्तव में जितेंद्री कहते। ये 31 नंबर की गाथा का नाम है जितेंद्री होने की गाथा। इसका दूसरा उपाय ये है गी ग्यायक संकर दोष का परिहार, है ना। इसी को कहते हैं निश्चय केवली की स्तुति। जैसे तीन नाम आए, पहला क्या है जितेंद्री होने की विधि क्या है, दूसरा नाम क्या है निश्चय केवली की स्तुति, और विधि है गी ग्यायक संकर दोष का परिहार। बाहर से भगवान कैसे दिखते हैं, परमोदारिक शरीर के धनी समोसरण में विराजमान 64 चवर ढुलते हैं, शरीर को देखे तो सफेद खून है, समचतुर संस्थान है, बहुत सुंदर मुद्रा है, देखते ही बनता है, आंख वहां से उठती नहीं है, इतना सुंदर रूप जिनेंद्र देव का। और ये गाथा कहती है कि उसे जिनेंद्र नहीं कहता जिसे इतनी महिमा आगम ने दी, जिसने जिनेंद्र देव ने हमें जिनेंद्र देव की बाह्य पहचान कराई कि हमारे भगवान जगत से न्यारे हैं, सारे जगत के जीव जो भगवान है मोही है रागी है देशी है 18 दोषों से ग्रसित है, हमारे भीतरागी भगवान कैसे भीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अंतर्मुखी हैं, अनंत आनंद को भोगते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, नौ लब्धियों का भंडार फूट पड़ा है, ऐसे भगवान होते हैं। तो एक निरूपण बाहर का और एक निरूपण भीतर का, तो कौन सा गलत है बाहर का सही है कि भीतर का सही है? एक तो एक पूछना, आगम बाहर की चर्चा करता, और अध्यात्म भीतर की बात करता, क्योंकि जीव भीतर से अपरिचित है। अभी हमें मंदिर तक लाए हैं तो बाहर का वैभव दिखा के लाए, ऐसे भगवान जगत में नहीं है। तो भगवान की सोम मुद्रा ही देख के हम प्रसन्न हो जाते, इतने सुंदर सीमंदर बेजोड़ जिनको देखते ही बनता है। अब वो कहते हैं कि ये सीमंदर नहीं है, सीमंदर तो भीतर बैठे। तो फिर ये कौन है कि सीमंदर भगवान के साथ में रहने वाले जो शांत परमाणु है वे भी इतने शांत है। शांत व्यक्ति के साथ रहने वाले परमाणु भी बहुत शांत होते, जिसके घर में शांत परिणामी जीव रहते हैं उनके घर में माहौल भामंडल भी शांति का रहता है। एक व्यक्ति अच्छा हो तो घर का माहौल अच्छा रहता है, लड़ते बढ़ते नहीं फिर लोग, भगवान के समोषण में लड़ाइयां नहीं होती, कोई को राग द्वेष नहीं होता, कसाएं नहीं होती, ऐसा प्रताप रहता। वो अपने आनंद को भोगते हैं तो आनंद के भोगने वाले जीव वहां पहुंचते। तो एक निरूपण कौन सा हुआ बाहर का, और एक निरूपण कौन सा हुआ अंदर का। अपन किस निरूपण से स्वरूप से अपरिचित थे, अंतरंग निरूपण स्वरूप से। तो इस गाथा में आपका अंतरंग वैभव दर्शाया, क्योंकि प्रतिज्ञा तो उन्होंने पहले ही कर ली कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा, और ऐसे नहीं बताऊंगा, निज वैभव से बताऊंगा। मैंने खुद आनंद भोगा है, देखा है, सुंदर स्वाद लिया है, तब ऐसा लगता है कि सारे जगत के भव्य जीव, अनंत अनंत जितने जीव हैं, सब इस मंडल में आओ, पाला मंदिर में तीन लोक के सारे जीव आओ, सीमंदर भगवान की सोम मुद्रा देखो और अंतर्मुख होकर सीमंदर जैसे बन जाओ। इतना हृदय विशाल है अमृत चंद्र देव का कुंद कुंद, और उसको बताने वाले गुरुदेव श्री का। देखो गुरुदेव श्री ने अपन को भक्ति करना भी सिखाया, उन्हें भगवान का स्वरूप भी बताया, और वो ही भगवान आत्मा को बताते। आज वो ही कह रहे थे कि जिनकी अपन भक्ति करते हैं वो भगवान की भक्ति यथार्थ भी तो करो, बाहर की भक्ति तो आपने बहुत बार की, कैसी होगी वो यथार्थ भक्ति। तो आज अपन गुरुदेव के माध्यम से समझते हैं। जो कल तो आप नहीं थे बाबूजी, ये पहला बोल जो चला पहली प्रवचन उसमें ये बातें आई, पेज नंबर इसमें 381 है। तो उन्होंने कहा कि 26 गाथा में जो कहा कि देह को और जीव को अलग अलग करते हो तो ऐसे में स्थिति कैसे बनेगी, और स्थिति साहित्य सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि अपने जो आदिनाथ भगवान है वो कितने धनुष की ऊंचाई थी उनकी, 500 धनुष की थी, कौन से वर्ण के थे, स्वर्ण जैसे थे, है ना, कितनी आयु थी उनकी, 84 लाख पूर्व की आयु थी, है ये सब वर्णन बेकार हो जाएगा। यदि आप कहते हो देह जीव अलग अलग है तो आप सोचो तो थोड़ी, बड़े बड़े आचार्यों ने दिग्गज आचार्यों ने ये स्तवन लिखा है, इसका क्या होगा। तो गुरुदेव ने वो अपने कुंदकुंद देव अमृत चंद देव ने कहा तू नए विभाग को नहीं जान, तुझे पढ़ना नहीं आता, अकल नहीं है, बाहर से कैसा दिखाएंगे और भीतर से कैसा, यानी जो बर्फ होता पंडित साहब बताना आप बर्फ कैसा होता है, ठंडा होता है, और डॉक्टर से पूछो कहते तहसील में गर्म हो, बताओ सगाई बताते कि नहीं, तो यदि गर्म नहीं होता तो सगाई कैसे बताते। बाबू जी सूरज कैसा होता, गर्म होता है परंतु उसमें तो ठंडा है, ऊपर तो देव रहते, 108 भगवान विराजमान। मेहंदी कैसी होती अंकिता, हरी हरी होती पर भीतर से कैसी होती, लाल होती। मुनिराज बाहर से कैसे दिखती, मेली नाम ही है उनका, पदम प्रभु मलधारी देव, और भीतर से कहते रत्नात्रय के धनी, आनंद में मगन, शुद्धोपयोगी वनवासी। तो ये कह रहे कि आपको अभी पढ़ना नहीं आता, नए विभाग को नहीं जान। ये जैन शासन में जो भी निरूपण है वो किसी एंगल से किया जाता है, जब कोई हम बाहर से भगवान को बताएंगे तो यही बताएंगे, देखो अन्य जगत के भगवान हाथ बढ़ाते हैं, यहाँ के भगवान हाथ समेटते, सारे जगत के लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते, हमारे भगवान आंखें बंद करके भीतर को देखते, कुछ अंतर है कि नहीं, हाथ पे हाथ रखते, पैर पे पैर रखते, क्यों? कुछ करने लायक नहीं है, कहीं जाने लायक नहीं है, कुछ भी देखने लायक नहीं है, आत्मा छोड़ने लायक नहीं है, आत्मा ही भोगने लायक है। ये शिक्षा जगत में जिन मुद्रा से बाहर से मिलती। अरूपी आत्मा दिखता नहीं है तो उसे दिखाने में निमित्त कौन बना? ये बाह्य मुद्रा बनी। इसका भी निरूपण हमारे भगवान ने किया और जीव यहीं रुक गया था। तो उन्होंने कहा, जिनपद नाही शरीर को, जिनपद चेतन माहि, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाही। तो बताओ भाई, परमोदारिक शरीर अपने भगवान का वर्णन है कि नहीं? कि नहीं है। ये शरीर का वर्णन, भगवान का खून कौन से रंग का होता है? तो खून भगवान का नहीं होता है, शरीर का होता है। सफेद खून भी किसका होता है? शरीर का होता है। सुंदर सुडोल शरीर किसका होता है? 1800 से रे कि भगवान का नहीं होता है, शरीर की रचना है। तो फिर भगवान किसे कहते हो? कि भगवान तो ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य है, अरूपी है, ज्ञान स्वभावी है, कैसा स्वरूप है इस जीवन आदि से अपरिचित। एक एक चीज को यानी देखो, पढ़ देना शांति से कि प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं भैया। तो इतना कितना सरल लगता है, ये दशा है न वो दशा है। अब वो कह रहे हैं कि हमें पता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके बाद ये विस्तार से किया, 13वीं गाथा से तीर्थ प्रवृत्ति के नाम से फैलाया फिर एक एक बात को। और 14वीं गाथा 15वीं गाथा में कहा, अरे तुझे कर्म बंधे है ने जो पढ़ा है, ये आत्मा के स्वभाव को कर्म स्पर्श भी नहीं करते। ये चार गतियों में गया जीव बहुत कष्ट पाए, परंतु द्रव्य स्वभाव चैतन्य स्वभाव ने किसी गति को स्पर्श नहीं किया, उस रूप नहीं हुआ है आत्मा। आत्मा तो आत्मा ही रहा। ऐसा अलग अलग फिर खोल खोल के एक एक गाथाओं में बताए। 17-18 गाथा में तो इतना सुंदर कहा कि जिस आत्मा को जानना चाहिए वो आत्मा तुझे प्रति समय जानने में आ रही। इससे भी सरल कोई उपाय हो सकता कि जिसको तुम जानना चाहते हो वो तो तुम ही हो, वो तुम ही तो जान रहे हो, और किसे जानना? हिसाब ऐसे जानते और हम ही आत्मा होते तो फिर आनंद आना चाहिए न? हमें तो आनंद आते ही नहीं। कि आनंद जानने से और आत्मा होने से नहीं आता, आत्मा जानता है और मैं ही जानन हार हूं ये मानने से आता। बैंक में करोड़ों रुपए होने से बैंक के मैनेजर को अपनापन नहीं आता उसमें, ना वो अपनी मानता है ना आनंद आता है। उसे जो वेतन मिलता है उसमें आनंद आता है। ऐसे ही भगवान आत्मा अनंत आनंद की मूर्ति है, तो हमें आनंद क्यों नहीं आता? कि होने से आनंद नहीं आता। भोजन के होने से भूख मिटती है कि सेवन से मिटती है? प्यास लगती है तो पानी पीने से प्यास बुझती, पानी होने से नहीं बुझती। ऐसे ही आत्मा एक कारण परमात्मा है, ज्ञायक भाव है, परम पारनामे के बहुत विशेषण, हजारों लाखों अनंतों है, परंतु यह आत्मा आनंदमयी होने पर भी, कारण होने पर भी, परमात्मा होने पर भी दिखता क्यों नहीं है? एक किसान को ये रत्न में, हीरे में, जवाहरात में ये कीमत क्यों नहीं दिखती? इसके दिमाग ही नहीं है इसको देखने। ये जीव भगवान है, ये केवल ज्ञानी कह रहा है, अनंत आनंद का पिटारा है, अनंत गुणों का निधान भरा है, ये भगवान की वाणी में आता। तो हमें क्यों नहीं दिखता, हमें आनंद क्यों नहीं आता? कि दिखता नहीं है ऐसा मत कहो, तुम देखना नहीं चाहते कहो। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है, क्योंकि तुम ही तो हो जो जान रहे हो। और कौन है जगत में? भाई 6 द्रव्य होते विश्व में, कितने द्रव्य होते? 6 द्रव्य होते। और कोई द्रव्य किसी द्रव्य में मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो हमारा स्वरूप जो है, हमने उसे छोड़ करके परद्रव्य में मिलावट की होगी कि नहीं? नहीं की होगी। तो हमारा द्रव्य सुरक्षित है कि खराब हो गया है? सुरक्षित है। फिर हमें एक सुरक्षित स्वभाव शुद्ध क्यों नहीं दिखता? ये सब अरुचि गुरुदेव ने दूर कर दिया। कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि अपन इस पंचम काल में और ये परम पवित्र परमात्मा की देशना में जो शंखनाद हुआ है उसमें हमारी महिमा गाई जा रही है, ये कभी कल्पना में भी नहीं आया। गुरुदेव अपनी महिमा नहीं कर रहे हैं, कुंदकुंदेव अपनी महिमा नहीं कर रहे कि मैं आचार्य हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ। वो कह रहे हैं कि तेरा भगवान जो है ना वो सिद्ध है, तुझे सिद्ध होगा ये तो पर्याय में बताया जाएगा, जिसमें पर्याय से सिद्ध बने ये तो शोभा है, पर प्रत्येक द्रव स्वभाव से सिद्ध है। अब गड़बड़ी क्या होगा, ये हो रही है कि अपन ने तो सुना प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं जीव जानने में आ रहा भगवान है, अतीन्द्रिय है, सुनकर के एक तरफ हो गए, फिर वही धंधा, फिर वही भोग, फिर वही दुनिया भर की विषय का साज सामग्री देख, उनको फिर एक एक चीज खोल के बताना पड़ा। 31 गाथा में उन्होंने क्या बताया, तुझे आंख से नहीं दिखता है, तुझे कान से नहीं सुनाई पड़ता है। अब ये इतना कोई करुणा करे, एक एक बार कह दिया शरीर अलग है और आत्मा अलग है, अरे तुम्हें नहीं समझ में आता पंचम काल के वक्र परिणामी और सुभर जीव पैदा होते या विषय लंपटी, यहाँ कोई ऐसे जल्दी नहीं मानता कि चौथे काल में एक बार देशना सुने वो दीक्षा ले, ऐसे जीव यहाँ नहीं आते। यहाँ तो गुरुदेव को 45 साल तक झकझोरना पड़ा और अब तो उसको और सरल करके बोलना पड़ता, तब कहीं अपने भेजे में घुसती। इतना ज्यादा ढीठ जीव पैदा होता है इस काल का कि सुनता यहाँ है गुनता हुआ, बस छोड़ो तो हम जाके भोजन करें, धंधा देख। ये सुना रहा है कि तेरे शरीर ही नहीं है तो धंधा कर ही नहीं सकता, भोगों में सुख नहीं है, ये सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई ये पड़ता है कि कितने बजे तक चलेगा। किसी कैसे जीवों से पाला पड़ा और तो भी करुणा सागर की करुणा देखो, कौन से करुणा से ये अपन सबको ऐसी पवित्र देशना मिल गई। ये 6-6 महीने ग्रंथ चलाए बाबू जी, 6 महीने आग लगाई शंकराचार्य और ये अन्य लोगों ने, पर कैसा भाग्य है अपना कि ये पूरा सुरक्षित बच गया। अपन तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये 2000 वर्ष पहले हुए भगवान है ना, और आज उनका ये ग्रंथ एक एक शब्द टीका सहित भावार सहित सब कुछ मिल रहा। इसकी कभी खुशी मनाओ तो ये दर्शन मोहनी भाग जाए, हमें कोई भगवान कह रहा है जी, कोई गजब का ग्रंथ। अन्य ग्रंथ में तो ये लिखा है तुझे भगवान बनना है कि नहीं भटकता रहेगा, ये ग्रंथ ऐसा नहीं कहता, ये ग्रंथ कहता है भटकना आश्रय तत्व है, तू तो बना बना है भगवान है, तुझे भगवान बनना नहीं है, तू तो चैतन्य चिंतामणि रत्न है, नरक का नार की भी भगवान है, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। वो कह रहे कि निगोदिया जो कभी नहीं निकलेगा ऐसे, और अभव्य भी, वे भी बिल्कुल ऐसे ही स्वभाव के धनी है जैसे सिद्ध भगवान। ये बातें कोई तारीफ करने की जगत में मिलेंगी, अपन को कोई पूछता नहीं बाहर में घूमो, ऐसे बहुत देखी बनिया बहुत ऐसे होते, और ये समय सारे ऐसा कहता है आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे को, मेरे पास तो आओ हम तुम्हारा वैभव बताते, और अपने निज वैभव से बताते। तुम चैतन्य हो, तुमने कभी सोचा ही नहीं है, तुम तो ऊपर ऊपर देखते हो कि शरीर है, इंद्रियां है, इतनी ऊंचाई है, मोटाई है, ये लाइफ इंश्योरेंस के डॉक्टर को तुम अपना परिचय देते फिर रहे हो, उससे अलग हटके कुंदकुंदेव वाला परिचय, आइडेंटिटी कार्ड ये दे रहे वो तुम्हारा परमानेंट, कि अय में को खलु शुद्धो, तुम एक हो शुद्धो, ज्ञान दर्शन मई हो, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। अब इतना सुंदर गुरुदेव का प्रवचन हो गया, अब इसके ऊपर प्रवचन करने की क्या जरूरत, किसी की हिम्मत है उनकी बात बोलने की, कि हे साहब हिम्मत उनके सामने बोलने की तो नहीं है, पर अपनी कमजोरी के सामने तो है, कि अपना मन भागता क्यों, ये मानता क्यों नहीं, इतना बड़ा पुरुष कह रहा है कि तू परमेश्वर है, भगवान है, आनंद की मूर्ति है, अपन कह रहे ये तो निश्चय की बात है, ऐसी तो इनकी आदत है कहने की, वो भीतर ही नहीं जाने देते अपन, ये इसलिए काल लग रहा, तो अपन को वो भ्रम निकालना है। अभी तो इसमें जब प्रारंभ किया उन्होंने तो यहां से चालू किया, ये निश्चय स्तुति कही और बात कह रहे हैं आत्मा की, और नाम दे रहे हैं निश्चय से केवली की स्तुति। जैसे इस गाथा की टीका लिखते समय यानी ये हेडिंग में दिया है कि ये निश्चय केवली की स्तुति कहते, क्योंकि व्यवहार केवली की स्तुति का उन्होंने 26-27 में निषेध कर दिया कि भाई जब देह और आत्मा एक साथ रह सकता है, एक होता है, इंद्रियों का आत्मा के साथ रहना इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं होता, ये तो कोई अपराध हुआ है इसे देह मिल गया, और ये इंद्रियां निमित्त होती हैं जानने में भोगने में, इससे कोई व्यत्यास नहीं होता। ये तो सम्यक दृष्टि की भी होती है आंखें, और गुरुदेव भी भगवान को देखते तो कुंद कुंदाचार्य देखेगी तो चलते हो, परंतु ये आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता, ये बात कहने के लिए गुरुजन मिलते। वो कहते हैं कि देख के देखने के लिए इंद्रियां भले निमित्त हो, पर उपादान क्या है ये तुमने क्यों नहीं विचार किया। आंख से दिखता है ये तो अध्ययन पढ़ाता है, लौकिक पढ़ाई जो जगत में चलती, पर हमारे भगवान ये कहते हैं कि जब आत्मा जानता देखता है तब आंख निमित्त होती। बाबू जी, आंख निमित्त होती है कि नहीं जानने में कौन बताएगा, आंख देखने में निमित्त होती है कि नहीं है? होती है कि नहीं? कान सुनने में निमित्त होते हैं, होते हैं? ये कहते हैं ऐसा नहीं, जैन शासन की कुछ सोच अलग है। वो कहते हैं ये निमित्त नाम का द्रव्य कोई नहीं है, ये जब तुम जानोगे कार्य होगा तब इस पे आरोप आएगा। यानी हम निमित्त भी बने कि हम किसी को सुखी दुखी कर दें, उसमें निमित्त बने कि ये निमित्त बनना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, उसमें कार्य होना हो तो आरोप आएगा तुम्हारे ऊपर। यानी निमित्त बने भी कर्ता बनेगा तो मिथ्या चलेगा। तो पहली बात कल कही थी गुरुदेव श्री ने कि निश्चय स्तुति कहेंगे, इसका नाम तो लिखा निश्चय केवली स्तुति, और बताने लगे आत्मा की स्तुति। तो उनसे पूछा कि फिर केवली क्यों कहते हो, इसे निश्चय क्यों कहते हो, भगवान की स्तुति करो आप। कि सुनो, भगवान की स्तुति करना राग है और भगवान आत्मा की स्तुति करना भी राग है। मतलब अपन राग से निकलना चाहते हैं कि नहीं, तो निकलना चाहते हैं तो अपने भगवान ये कहते हैं कि जहां हम देख रहे उसे देखोगे तो तुमने हमें माना। इस जगत से न्यारा दर्शन, सारे जगत के दर्शन तो कैसे कहते हैं, हमारी शरण में आओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, सबका मालिक एक। और अपने भगवान कहते हैं सब मालिक हैं, अपने अपने सब स्वतंत्र हैं, सब सिद्ध हैं, सबकी योग्यता अलग अलग है, सबके परिणमन अलग हैं, कोई किसी का भगवान नहीं है, कोई किसी का मालिक और स्वामी नहीं। ये ही पढ़ाई। तो एक तो ये आया था कल कि इसमें भले नाम आया कि तीर्थंकर की केवल ज्ञानी की सांची स्थिति कहेंगे, बात तो ऐसी है, परंतु आत्मा की स्थिति ये केवली की स्थिति क्यों, क्योंकि केवली भगवान ने ये करने कहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया केवली की स्थिति। और केवल ज्ञान प्रकट होने की विधि ये है, इसलिए कहते केवली की स्थिति। और तीसरा, तू केवल एक ज्ञायक भगवान है, उसका श्रद्धान ज्ञान अनुभव से तू आराधना करेगा, इसलिए आत्मा की स्तुति केवली की स्थिति। फिर दूसरा बताया, बड़े अक्षरों में लिखा है, जो इंद्रिय जड़ता, जो इंद्रियों को जीतकर, जीतना किसे वैसा इंद्रियों को, है ना, कैसे जीतेंगे, इसमें गजब की विधि बताई कि जीतना इंद्रियों को, इंद्रियों में कुछ नहीं करना है, राग को दूर करना, जिस प्रकार से राग मिटे ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, ऐसी परिभाषा लिखी तोड़ में। अब वो कहते कि राग मिटाना ये लक्ष्य बन गया, ज्ञान तो कर लिया, पर राग मिटाने का उपाय हम बता रहे हैं कि राग मिटाने से नहीं मिटेगा, नया राग हो जाएगा। तो फिर कैसे मिटेगा, कि राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जब तू अपने आत्मा को जानेगा तो राग करने का भाव नहीं आएगा। व्यक्ति माँ बाप शांत हो गए, गरीबी में भूखा प्यासा फैल रहा और भोजन मांगता है, तो बताओ वो अपने आप को भिखारी मानता है और किसी तरह से पेट भरता है। और उसका एक दिन पड़ोसी मिला, उसने कहा बेटा ये कहाँ घूम रहे, अच्छा अच्छा 2 रुपए दे दो चाय पी ले। अरे तुम्हारा बंगला है करोड़ों रुपए, तुम्हें तो बहुत बड़ी विभूति, तुम्हारे पिताजी माताजी सब छोड़ के चले गए और हमसे बता गए। तब बताओ वो अपने को क्या मानता है, भिखारी, और है कैसा, ऐसे सारा जगत अपने आप को क्या मानता है, दीन ही, और है कैसा, सर्वज्ञ स्वभावी, आनंद स्वभावी। अब वो भूल मिटाना इतना सा काम है, कुछ बड़ा काम नहीं। तो इंद्रियों को जीतना यानी क्या क्या जीतना पड़ता है इंद्रियों के? इंद्रियों को जीतना यानी इंद्रियां मैं नहीं हूँ, इंद्रियों से मेरा अस्तित्व नहीं है, इंद्रियों से मुझे ज्ञान नहीं होता। तीन बातें बताई, बताओ क्या? इंद्रियां मैं नहीं हूँ, इंद्रियों से मेरा अस्तित्व नहीं है, इंद्रियों से मुझे ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों के भोग में नहीं भोगता हूँ, भ्रम भोगता हूँ। लगाना आप एक बात, जैसे सौमिल भाई, अपन ने रसगुल्ले खाए, अपन ने यानी अभी वर्तमान दशा रसगुल्ले खाए, तो रसगुल्ले का स्वाद कैसा? अभी सा मीठा है, तो स्वाद आएगा कि नहीं उसका? अपन आएगा तभी तो बता रहे। तो रसगुल्ले में से रस का जो मीठा स्वाद है वो निकल के जीभ में या जीव में आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो तुमने रस कैसे स्वाद ले लिया? तो निकले नहीं उससे, ज्ञान ही हो सकता है? तो ज्ञान हो सकता है, उसका सेवन तो नहीं हो सकता। और जीव भ्रम से कितने दिन से मान रहा कि मैं रसगुल्ले खाता हूं, मैं सीरा खाता हूं, थोड़ी भोजन करता हूं, परंतु भगवान ये पूछ रहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ सेवन कर सकता, ग्रहण त्याग कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो ये होता क्या रहता है? ये खाने पीने, इतने गेहूं लेते, इतना घी आता, इतना तेल आता, वो सब कहां जाता? अजीव खाता है। अरे ये बता रहे कि इंद्रियों को जीतना क्या कहलाता है? ये बहुत बड़े भ्रम है जीव कि हमने इंद्रियों के विषयों को छोड़ दिया तो हमने इंद्रियों को जीत लिया, कि ये इंद्रियों को जीतने की विधि नहीं है जो तुमने और हमने। ये कसाय मंद हो सकती है यदि अपन को विषयों के प्रति थोड़ी आसक्ति टूटती है, तो अपन ये कहते कि भाई हम रात में नहीं खाएं, क्या खिलाना इस मट्टी को, सब लेटरिन बन जाना, इसे देह की क्या कीमत, ये सब छूट जाएगा, अभी राख हो जाएगी। तो थोड़ी कसायमंद होती है ना, तो अपन कंदमूल छोड़ देते हैं, रात्रि को भोजन छोड़ देते हैं, और फिर जगत हमें बाय से जैनी भी कहता है कि अब थोड़ा अच्छा लगता है, सदाचारी हो आप, होटल में नहीं खाते, अभक्ष नहीं खाते। एक जैनी हो, इंद्रियों की विजय का पाठ हो, वो बाहर में बिस्लरी पी, बाहर में अभक्ष खाए होटल में, तो फिर वो जैनी भगवान कैसे बनेगा? ये गुरुदेव ने कहा ना, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ, अशरीरी आत्मा है, और अशरीरी होने यानी दशा भी प्रकट हो इसके लिए बनाया, और अपनी अभी इंद्रियों की दास्ता इतनी कड़ी और ढीली ना पड़े, तो फिर ये बात छह समय तो आएगी, पर भीतर नहीं घुसी। इसके लिए तो हृदय चाहिए। एक नेता भी चुनाव जीतने के लिए सिगरेट छोड़ देता है, दारू छोड़ देता है, हाथ जोड़ने लगता है, पैर पड़ने लगता है, विनय आ जाती है, भद्र कपड़े पहनने लगता है, जींस जींस छोड़ देता है, कुर्ता पैजामे ऐसा पहनता है जैसे बगला भगत दूध का बना हो, और कुछ हानिया। चुनाव के बाद देखना बाबू जी की दशा क्या, दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। तो वो जब 5 साल की विजय के लिए इतना सुधर जाता है, एक बच्चा थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म पे आता है तो एंट्रेंस मिलती है, तो अपने भी तो कुछ नियम धर्म होंगे कि नहीं? ये इंद्रियों की विजेता बता रहे हैं बनने की विधि, और अपन कह रहे हैं भाई साहब मेरा आइसक्रीम के बिना नहीं चलता, मैं तो बाजार में रोज पानी पूरी खाता हूँ जब मजा आता। तो ये प्रकार को पढ़ते, ये तो तुझे कभी इंद्रियां मिले ना, तू इंद्रियों का गुलाम ना रहे, इंद्रियों के ढक्कन मिले तब तुझे देखना हो, ऐसा कलंक मिटाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही। ये शोभा नहीं है शरीर का मिलना, ये कोई अपन ने अपराध किए थे उसके फल में ये कैद खाना मिला, और अपन इसकी फोटो उतरवाए और अपनी इससे इज्जत माने, पागल हो गए जीव? ये दम क्या है सोचो तो, ये राख है, स्मशान की राख है ना, जो उसके पूर्व की दशाएं थोड़ी देर बैठी, और अभी कब ऐसा हो जाएगा बिना जीव का हो जाए, कब मट्टी में मिल जाएगा? थोड़ी मन बनाना पड़ेगा इसके लिए, ये गाथा है पचाने की, ताकत तो लगेगी, क्योंकि जीव को अनादि काल से इसी जड़ से प्रेम है, वो कुछ भूल हो गई ना, इसको मट्टी को अपना मान बैठ, अरे मिट्टी की काया बीच में एकता चिन्मय भिन्न अति सुबह शुभ की जड़ता तो दूर पराया ज्ञान यहाँ। यदि आत्मा देखना है बाबू जी तो इसे मिट्टी बांधना पड़ेगा, अरे मिट्टी की काया बीज, इसे मिट्टी कह सकते हो आप? अपन को तो कोई सेठ जी कहता तो अपन ऐसे हो जाते। ये सेठ जी कह रहे हैं यानी तुझे आत्मा नहीं कह रहे, तुझे अपमान कर रहे, नहीं तू खुश हो रहा, तुझे ये कह रहे हैं कि तू जेल में पड़ा है सेठ जी, और ये कह रहा है कि देखो हमें सब लोग जय जयंत करते सलूट मारते है। ये डॉक्टर साहब, अपन को कोई डॉक्टर कहे तो ये उपाधि है कि शोभा? अरे डॉक्टर तो अरहंत देव, डॉक्टर तो हमारे मुनिराज है, डॉक्टर तो हमारे गुरुदेव थे जिन्होंने हमें भ्रांति के रोग से निकाला। समझने में थोड़ा सा धक्का लगे अपनी मान्यताओं पे तो फिर ये चैतन्य उड़ दो। देखो सभी जीव तो आत्मा विराजमान चैतन्यमयी ही है, ज्ञान स्वभावी ही हैं, इन्हें कोई ज्ञान स्वभावी बनना थोड़ी है। इसलिए द्रव्य में तो कोई करना धरना है न, गुण में न द्रव्य में न पर्याय। अब करना कहाँ है? जहां गड़बड़ी है वहां करना। गेय और ग्यायक शंकर दोष पढ़ा रहे थे गुरुदेव, तो गेय और ग्यायक को अलग अलग करना कि नहीं? क्यों नहीं करना? अलग अलग है तो फिर अलग अलग है तो फिर ये शंकर दोष कहां से आ गया? मानता है तो मान्यता सुधारना, तो मान्यता सुधारने के लिए क्या करना? निर्णय करना, वज्र का निर्णय। एक लड़की जो अपने घर छोड़ के माँ बाप को छोड़ के और जब ससुराल जाती तो सब कुछ छोड़ के जाती, सहेली मम्मी पापा अनुकूलता सब आदर सब कुछ वैभव संपन्नता सब मैडम और मंदिर और परिवार और नगर सबको एक तरफ रख देती है, तब कहीं उस घर की देरी पर पैर रखने मिलता है और फिर उस घर की राजा की रानी बन पाती। यदि वो कहे कि कथनचित मेरा वो घर है, वो कथनचित मेरा ये घर है, तो कह रहे आप उसी घर में रह लो या फिर इस घर में रह। ऐसे ये जड़ शरीर ऐसा लिखा, आई कथम अपनी मृत्युआ वही मर कर के भी इस तत्व का कौतूहली बन। तो इसे क्या लिखा? पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक थोड़ी देर के लिए इसका पड़ोसी बन। किसका? मृतक कलेवर का। कोई दूसरा अपन को ऐसा कहे मुर्दा कहाँ जा रहा तो अपन को बुरा लगता है, पर जिनवाणी तो भीतर आ गई है ना, संत तो हमारे हृदय के साफ है, ये तो कह सकते भाई साहब इस मुर्दे को काय को ढो रहे, थोड़ा हृदय बदलना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये कह रहे हैं पेज नंबर 382, बस 2 मिनट में समाप्त। ठीक है, जे मुनि जो इंद्रियों ने इंद्रिय शब्द आया, कुंदकुंद देव ने इंद्रिय शब्द कहा था और अमृत चंद्र देव ने इसमें से 3 शब्द अर्थ निकाल लिए। कौन कौन सी 3 इंद्रियां? द्रवेंद्रियां, भावेंद्रियां और विषय। अभी जी सबको इंद्रिय क्यों कहा? भाई भावेंद्रिय तो जीव की पर्याय है और इंद्रिय के विषय तो सारी जगत की सामग्री, पूरे विश्व को इंद्रिय कहा। और भगवान को भी बार बार कहते थे स्वामी जी कि जिन भगवान से हमें ये मार्ग मिला, जो जिनवाणी सुनकर हमारा हृदय द्रवित होता है, हमें अपनी खबर आती, उस जिनवाणी को भी वो इंद्रिय कह रहे थे। सीडी टेप मूर्ति समोसरण शरीर भगवान वाणी दिव्यध्वनि सबको इंद्रिय कह रहे थे। ये धक्का लगना चाहिए कि इसे भी इंद्रिय का। दूसरा, ये भावेंद्री जो अपन को प्राप्त ज्ञान है उसके 2 रूप, एक भावेंद्री जिससे अपन इन द्रव्येंद्रियों के माध्यम से गेयों को जानने में लगते हैं, ज्ञान अपने पास है और गेय सामने भी है और ज्ञायक भी गेय, 2 गेय हो गए, ये 100 गेय और पर गेय। अब अपना ज्ञान क्या कर रहा? पर गेय को जानने में लगता है। तो किस माध्यम से लगता है? इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों के माध्यम से लगेगा तो इंद्रियां उसे क्या दिखाएंगी? पुद्गल दिखाएंगी कि आत्मा दिखाएंगी? ये इंद्रियां पुद्गल की बनी है तो इसे पुद्गल ही दिखाने में निमित्त बन सकती। जितनी वे इनके ढक्कन बाहर खुलते, आप देखना कान भी बाहर खुला, आंख भी बाहर खुली, नाक भी बाहर खुला, मुंह भी बाहर से खुला, भीतर का स्वाद भीतर का ज्ञान नहीं करती इंद्रियां। यानी ये अचेतन है, जड़ है, और इनसे कभी आशा नहीं करना कि हमें आत्मा देखने मिल जाए। इनसे तो पौद्गलिक संबंधी और वो भी अस्पष्ट ज्ञान होगा, जैसा सर्वज्ञ देव ने बताया वैसा ज्ञान नहीं होगा। तो अभी इन्होंने ये गाथा में तीन प्रकार की इंद्रियां के बताई और उसे जीतने के लिए बताया कि ज्ञान स्वभाव से इन्हें जीता जा सकता है। इन्हें जीतने के लिए इनमें कुछ नहीं करना, परंतु ये जहां है वहीं एक अस्तित्व है, एक सत्ता है जिसका नाम है ज्ञान स्वभावी आत्मा, और वो ज्ञान स्वभावी आत्मा शरीर में इंद्रियों में रहने पर भी इंद्री रूप नहीं होती, इंद्रियां रहने पर भी, इंद्रियां निमित्त बने होने पर भी इंद्रियों से नहीं जानती, इंद्रियों का सुख नहीं भोग सकती। ऐसा जिस दिन तुम्हें ये भाव आएगा कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं अपने से जानता हूँ, मेरा ही जानने का स्वभाव है, उस दिन तुम जितेंद्री हो गए, सिद्धों की श्रेणी में आने में तुम्हारा नाम लिख जाएगा कि ये एक्सक्लूसिव पर्सन है, ये भगवान बनने जा रहा। एक छोटा सा उदाहरण देके समाप्त कर रहे हैं। एक गांव में किसान, और वो पढ़ा लिखा नहीं था, और कोई भी पत्र आता था तो वो अपने पटवारी से, पढ़े लिखे लोगों से पत्र को पढ़वाने जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अभी टाइम नहीं, बाद में आना। तो उसे लगा कि ये कितना अहंकारी है, ये पढ़ लिख के आ गए हैं और ये इतना भी नहीं बता सकते, तो अब मैं भी चश्मा लूंगा और मैं भी पत्र पढ़ूंगा। तो उसने बाजार में गया और चश्मा खरीदने के लिए गया, और चश्मा खरीदते समय कहा कि भाई साहब ये चश्मा चाहिए जिसमें हमें ये पढ़ना आया। तो उसने सारे चश्मे के नंबर लगाए पर उसे समय सार नहीं पढ़ पाया। तो बताओ क्या गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो क्या समझ रहा था कि चश्मा लगा लेंगे तो ज्ञान आए, जगत क्या समझ रहा है कि आंख अच्छी रहेगी तो ज्ञान हो, कान अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो सुनाई पड़ता रहे, उसे ये नहीं समझ में आता है कि आत्मा नहीं रहेगा तो कान और ज्ञान आंख रहेगी भी तो जानेगा कौन, और अभी जो जान रहा वो आत्मा नहीं है तो और कौन जान रहा। तो जैसे वो पटवारी के पास जाता था और पत्र पढ़वाता था और उसने देखा कि जब भी पत्र पढ़ता है तो चश्मा लगाता है, तो उसके दिमाग में आ गया कि चश्मे से ज्ञान होता है, तो इसलिए उसने कहा चश्मे वाले से कि ऐसा चश्मा दो कि मैं भी पढ़ सकूं। तो उसने सारे नंबर लगाए और उसे ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान से होता है, गे से, चश्मे से, आंख से ज्ञान। तो यही पढ़ाई अपने लिए भगवान करा रहा है कि भैया तुझे जो अभी जानकारी हो रही, अभी प्रवचन कैसा लगा बाबूजी? प्रवचन कैसा लगा? अच्छा लगा कि? तो अच्छा प्रवचन है कि अच्छा ज्ञान है? ऐसी बात बात में अपने भगवान अपन को जगाएंगे कि तुम्हें समोसा अच्छा लगेगा। स्वामी जी से एक व्यक्ति ने कहा था कि आज मुझे लगा कि पंच परमेष्ठी मंगल है, उत्तम है, शरण। तो स्वामी जी बोले आज मुझे लगा कि तेरा ज्ञान मंगल है, उत्तम है और शरण।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी आसीउ
आत्मस्वरूपी के लिए भजन
बोले
5 मिनट
शुद्ध स्वरूपी अविनाशीउ आत्मस्वरूप
पारला में जो पंच कल्याणक हुआ था उसकी स्मृति याद आती, उसी समय लिखा गया भजन वो बोल रहे। धवल जिनालय धवल जिनेन्द्र धवल सिमंदर जिने प्रतिबिंब धवल हुए परिणाम हमारे दर्शन कर जिन राज तुम्हारे जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ बोलो हे वेदेही नाथ पधारो यहाँ सर्वज्ञ विरह अवतारो स्वागत है प्रभुवर स्वीकारो पाप पुण्य से हमें उबारो जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ कुंद कुंद मुनि धबले हमारे समय सारे जिन ग्रंथ रचारे धबल हृदय अमृत चंद्र स्वामी आत्म ख्याति टीका रचिनामी जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ धबला ग्रंथ जी धबले हमारा पुष्प दंत भूते बलि उजियारा विमल संस्कृति धबले बताई धन्य जिनागम शिव सुखदाई जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ बोलो जय पारिल मंदिर धबले हमारा लागे नंदी सर सम प्यारा मंदिर में परमागम मंदिर बाओ बब निहारो जीवर जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ बोलो सीमंदर मंदिर में मंदिर धबल सोनगढ़ संग में गुरुवर भगवती माता धबल हमारी स्वानुभूति दर्शन दातारी जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ माने अपमाने हमें न सतावे विद्या आप से सीख के जावे आपका नाम लिखा था उस समय इंद्र बने थे न सोदर श्रीनिमेश जी इंद्र कुबेर धन को धूल समान लुटा रहे जय जय शांति नाथ बोल जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ बोलो धबले साधना भूमि निहारो मिली मनुज पर आए समारो हो परमात्म छू स्वीकारो भव भव के कलम से धूड़ारो जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ जय जय शांति नाथ बोलो अंत में पंच कल्याण के धबले महोत्सव सम्यक दर्शन दाता उत्सव बहे तत्व तत्व की बही तत्व की अमृत धारा मिटी कलुषिता काली के कारा। जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति नाथ, जय जय शांति नाथ बोलो जय जय शांति।
भगवान नो जय हो। अड़क दान मना धारक अखंड साधना प्रत्येक श्री बाहुबली मुनीन्द्र भगवान नो जय। दीर्घ धनिना सारभूत नित्य बोधक परमागम समय सारधी समस्त जिनवाणी मात नो जय हो। भारत क्षेत्र में सद्धर्म निवृद्धि करना भगवान श्री कुंकुंद आचार्य देव नो जय हो। लाखों करोड़ों भक्तों ना तरणहार आम भक्तों ने मोह निंदा माथी जगाड़नार अनंत आनंद उपकारी श्री कहान गुरु देव नो जय हो। कहान गुरु महिमा प्रकाशक प्रसन्नमूर्ति धन्यवतार पूज्य भगवती मातनो जय हो। मुनि दशा ना पूर्व अवसर नी भावना जागरूक कराना और परम कृपाऊ देवनो जय हो। शाश्वत पर्व अष्टानिका पर्वनो जय हो। श्री परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। बोलो द्वादशांग में समस्त जिनवाणी मातनो जय हो। हवे आपणे जिनेन्द्र भगवंतना अर्थ तथा समुचार उपर जिन मंदिर मां अने त्यार बाद क्लास वगैरह कार्यक्रम।